इंसान अपनी जिंदगी में दो अहम फैसले करता है, एक घर वाली का और एक घर खरीदने का। घर खरीदने के लिए मॉर्गेज चाहिए होता है। मॉर्गेज के लिए आप कॉन्टेक्ट कीजिए प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा से। मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा, फोन नंबर है 4164278655। अगर आपका क्रेडिट खराब है, न्यू इमिग्रेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तब भी आपको मॉर्गेज मिल सकता है। फोन कीजिए 4164278655 सैयद आसिफ रजा।
अस्सलाम वालेकुम और आदाब सब सुनने वालों को। आप हर बुध को कारोबारी दुनिया के हवाले से प्रोग्राम सुनते हैं। सैयद आसिफ रजा का मुझसे राबते का नंबर है 4164278655। और जैसा कि हम कहते हैं, इंसान अपनी ज़िंदगी में दो अहम फैसले करता है, एक घर वाली का और एक घर का। और घर के लिए जब फैसला करना हो तो आप फ़ोन करेंगे सैयद आसिफ रजा को। मुझसे राबते का नंबर है 4164278655। आपको चाहे परचेस के लिए मॉर्गेज चाहिए हो, रीफाइनेंस और स्विच अगर कर रहे हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-427-8655। मेरी कोशिशें ज़्यादा होती है जो ख़ास तौर पे हिजरत करके पाकिस्तान इंडिया से लोग आए हुए होते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्गेज और रियल इस्टेट की इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि एक बड़ा फैसला करने में उनको मदद मिल सके। और अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन, सही मालूमात, सही नॉलेज होगी तो ज़ाहिर बात है आप फैसला भी कर सकेंगे सही तरीके से। तो हस्ब दस्तूर आज हम का जो प्रोग्राम है वो थोड़ी सी आपको हम मॉर्गेज की इंफॉर्मेशन देंगे, रियल इस्टेट की इंफॉर्मेशन देंगे, मार्केट के बारे में गुफ्तगू करें, कुछ प्रोडक्ट्स और रेट्स के बारे में भी गुफ्तगू होगी। उसके अलावा आज हमारे साथ मौलाना हजरात भी होंगे और क्योंकि अभी जो है एक रिलीजियस अयाम आने वाले हैं, उस सिलसिले में जैसे कि हमारा दस्तूर रहा है कि हम उसके ऊपर भी प्रोग्राम रखते हैं उसी के मुताबिक। प्रोग्राम आप सुनते रहिए सैयद आसिफ रजा का। और आइए हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और फिर आपको मॉर्गेज के रेट्स सुनवाते हैं।
इंसान अपनी जिंदगी में दो अहम फैसले करता है, एक घर वाली का और एक घर खरीदने का। घर खरीदने के लिए मॉर्गेज चाहिए होता है। मॉर्गेज के लिए आप कॉन्टेक्ट कीजिए प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा से। मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा, फोन नंबर है 4164278655। अगर आपका क्रेडिट खराब है, न्यू इमिग्रेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तब भी आपको मॉर्गेज मिल सकता है। फोन कीजिए 4164278655 सैयद आसिफ रजा।
जी सामिन, तो सवाल भी आ रहे हैं कि व्हाट इज़ द फिक्स रेट टुडे एंड वेरिएबल। बिल्कुल आपको बताया जाएगा। उसके अलावा आपको क्या लेना चाहिए उसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। और आपको हम सबसे पहले चलते हैं आज के रेट की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि फिक्स रेट जो हैं वो अभी भी बैंक्स ने थोड़े से नीचे रखे हुए हैं कंपेयर टू, जैसे अगर हम एक साल डेढ़ साल पहले चले जाएं तो 3 से ऊपर चले गए थे, 3 पे चले गए थे। लेकिन अभी 5 का जो फिक्स रेट है वो अभी भी अगर आप हाई रेशियो इंश्योर्ड डील है 5-10-15% कर रहे हैं तो भैया अभी भी जो रेट है बहुत बेहतर है, 2.89% 5 फिक्स। और अगर आप 20% यानी कन्वेंशनल डील है विदाउट इंश्योरेंस तो आपका रेट हो जाता है 2.99। तो दो रेट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, एक है फिक्स रेट 5 का वेरिएबल फिक्स रेट इंश्योर्ड और एक है विदाउट इंश्योर्ड। अच्छा, जो अब विदाउट जो इंश्योर्ड होता है वो कहलाता है कन्वेंशनल रेट, यानी आपका जो बैंक है वो आपकी डिपेंड करता है कि आपको वो इंश्योरेंस करा रहा है कि नहीं करा रहा। अगर बगैर इंश्योरेंस के कर रहा है बेस्ड ऑन योर सैलरी, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड की सम टाइम इंश्योरेंस भी हो जाती है, तो फिर वो आपको डिफरेंट रेट अप्लाई हो सकता है। लेकिन वैसे जो बढ़िया रेट है इस वक्त 2.89 5 का फिक्स और 2.99 जो 20% प्लस डाउन पेमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा जो वेरिएबल रेट है वो है प्राइम माइनस 1.05, तो आपका रेट हो जाता है 2.90। और आपका जो दूसरा रेट है जो फिक्स यानी 20% डाउन दे रहे होते हैं कन्वेंशनल रेट, वो है इस वक्त 3.25 वेरिएबल रेट। तो वेरिएबल रेट की जो खबरें आ रही हैं वो अभी भी यही हैं कि शायद जो रेट है वो गिराना जाना चाहिए था, जो अभी एक दो अनाउंसमेंट आई थी उसमें नहीं गिराया, स्टेबल रखा है। तो अभी भी जो प्राइम रेट है वो है 3.95, और जो आपका एज ए अगेन अगर आप हाई रेशियो डील ले रहे हैं तो 1.05, तो आपका रेट हो जाता है 2.09। अगर कन्वेंशनल है तो प्राइम माइनस आपका रेट हो जाता है, अल्लाह भला करे 95 है तो कोई 75 भी दे रहा है, और जो सबसे बढ़िया रेट है वो है 3.25। उसके अलावा आइए तीन साल के रेट के ऊपर चलते हैं। तीन साल का जो रेट है वो इस वक्त जाके खुल रहा है इस दफ़ा, जो अगर तीन साल के रेट पर हम जाते हैं तो एक लेंडर जो है वो 2.99 हमें तीन साल का रेट दे रहा है, लेकिन ये हाई रेशियो है, यानी आपकी जो डील है वो इंश्योर्ड होनी चाहिए। मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझसे प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं 416-427-8655। और फिर जो सवाल उठता है वो यही उठता है कि यार रेट कौन सा लें, आसिफ भाई फिक्स लें कि वेरिएबल लें? और फिर मैं उन लोगों से यही कहता हूं कि अगर आप घर बेच रहे हैं 5 साल के अंदर तो वेरिएबल लें, या आपको रीफाइनेंस करना है 5 साल के अंदर तो वेरिएबल लें, वरना फिक्स रेट भी लिया जा सकता है। लेकिन जो आजकल के रेट 2.89 या इस किस्म के जो रेट चल रहे हैं, एक और अभी हमारे पास अभी बिल्कुल आपके साथ गुफ्तगू करते हुए ही एक ईमेल आई है जिसमें एक दो लेंडर्स ने अपने रेट जो हाई रेशियो है यानी 5-10% डाउन दो कर रहे हैं, उनका रेट कर दिया है भैया 2.69। लीजिए 2.69 फिक्स रेट। अभी रेट की इंफॉर्मेशन आई है कि जो 5, 10, 15% डाउन दे रहे हैं उनका रेट हो जाएगा 5 साल का 2.69। 2.89 था उसको आप अपने जहन से निकाल दें तो 2.69, और जो 20% ज़्यादा डाउन दे रहे हैं उनका है 2.99। मज़ीद मालूमात के लिए आप कॉल कर सकते हैं 416-427-8655। आइए कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और फिर हम कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट के बारे में आपको हम बताते हैं जो कमर्शियल लोन मॉर्गेज लेना चाहते हैं।
इंसान अपनी जिंदगी में दो अहम फैसले करता है, एक घर वाली का और एक घर खरीदने का। घर खरीदने के लिए मॉर्गेज चाहिए होता है। मॉर्गेज के लिए आप कांटेक्ट कीजिए प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा से। मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा, फोन नंबर है 416-427-8655। अगर आपका क्रेडिट खराब है, न्यू इमिग्रेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तब भी आपको मॉर्गेज मिल सकता है। फोन कीजिए 416-427-8655 सैयद आसिफ रजा।
जी सामिन, यहाँ पर आपको बता दें कि अगर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने दो स्पेशल प्रोग्राम पे स्पेशल फंडिंग हो रही है, और मैं आपके कानों तक वो प्रोग्राम पहुँचाना चाहता हूँ जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लोग सोच रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं करने को, तो दो प्रोजेक्ट हैं। एक तो है सिक्स प्लेक्स, यानी जो एक कोई बिल्डिंग आप ले रहे हो ओशवा से लेके हैमिल्टन तक कहीं पे भी, या अगर आप नॉर्थ चले जाते हैं तो बैरी से लेके और साउथ आ जाते हैं तो टोरंटो तक, तो वो उसमें 6 अपार्टमेंट उस बिल्डिंग में या उस घर में या उस प्रोजेक्ट में होने चाहिए, चाहे आप कंस्ट्रक्शन कराएं चाहे आप बना बनाया ख़रीदें। 6 प्लेक्स कहते हैं उसको, यानी 6 अपार्टमेंट और उससे ज़्यादा, 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। अगर वो अपार्टमेंट बिल्डिंग बिक रही है जिसमें 6 अपार्टमेंट हैं और रेंट पे लगे हुए हैं या रेंट पे लगाए जा सकते हैं, उस प्रोजेक्ट को आप 15% डाउन पे ख़रीद सकते हैं, 15% डाउन, और उसकी जो एमोर्टाइजेशन है वो 40 साल तक होगी, 40 ईयर्स, और उस पे जो रेट है वो है 3% बिलो, यानी 2.99 आप रखें जहन में, उससे भी कम हो सकता है, डिपेंड करेगा आपके क्रेडिट पर। उसके अलावा वो जो फिक्स रेट देंगे वो 5 साल का नहीं है, वो 10 साल का फिक्स रेट होगा कमर्शियल प्रोजेक्ट पर, ओनली इस स्पेशल एक यानी कॉन्डो अपार्टमेंट। अगर जैसे कोई बिल्डिंग आपको मिल रही है जिसमें 6 अपार्टमेंट या उससे ज़्यादा लगे हुए हैं रेंट पर, उससे इनकम जनरेट हो रही है तो 15% पे आप ख़रीद सकते हैं, या फिर ओल्ड एज हाउस या रिटायरमेंट हाउस, रिटायरमेंट और ओल्ड एज हाउस आप ले सकते हैं 15% डाउन के ऊपर, अगर उसमें 15-20 कमरे हैं और ऑक्यूपेंसी 80% से है, होती है ज़्यादातर लोगों की उसमें, लोग ओल्ड एज में या रिटायरमेंट होम्स में, तो आप वो भी ख़रीद सकते हैं 15% पे। या आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो 15% होनी चाहिए, जो भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है या वैल्यू है। तो इसके बारे में मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं 416-427-8655। कमर्शियल जो ये जो बिज़नेस लोन्स होते हैं या अनसिक्योर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट होती हैं, ये मेरा डोमेन या मेरी स्पेशलिटी नहीं है, तो आप उसके लिए अखबार में लोगों को देख सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप घर या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कभी भी मॉर्गेज या छोटा लोन उठाना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत से इन्वेस्टर्स हैं जो आपको बहुत ही अच्छी कीमत पर, अच्छी रेट के ऊपर और आपको फौरी तौर पर डिसबर्समेंट हो सकती है अगर आपको इमरजेंसी आन पड़ी है कोई, जिसमें कोई क्रेडिट और कोई इनकम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं 416-427-8655। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और फिर दोबारा प्रोग्राम में वापस आते हैं।
इंसान अपनी जिंदगी में दो अहम फैसले करता है, एक घर वाली का और एक घर खरीदने का। घर खरीदने के लिए मॉर्गेज चाहिए होता है। मॉर्गेज के लिए आप कांटेक्ट कीजिए प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा से। मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा, फोन नंबर है 416-427-8655। अगर आपका क्रेडिट खराब है, न्यू इमिग्रेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तब भी आपको मॉर्गेज मिल सकता है। फोन कीजिए 416-427-8655, सैयद आसिफ रजा।
और दूसरी हम अपने प्रोग्राम में जो आजकल एक स्पॉन्सर्स को ले रहे होते हैं वो है नेचर्स मिक्स। नेचर्स मिक्स के बारे में बताता चलूँ, क्योंकि नेचर्स मिक्स की प्रोडक्ट एक ऐसी प्रोडक्ट है जो मैं समझता हूँ कि अब हर कोई, ख़ास तौर पे स्पेशली जो कनाडा में आ गए हमारे इंडियन पाकिस्तानी भाई और जो भी ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में हैं, और वो अपने साथ, क्योंकि ये रेडी प्रोडक्ट है, बेक्ड है, जो ओट्स यानी जौ जिसे कहते हैं बेक्ड, आप उसको अपने साथ रख सकते हैं। अब आप ये दाल मोट और ये दाल सेवा और ये सब चीज़ों से निकलें, उसमें वो हेल्दी प्रोडक्ट नहीं है। आइए एक कमर्शियल लेते हैं नेचर्स मिक्स का, और उसी के साथ आपको हम नेचर्स मिक्स की और भी इन्फॉर्मेशन देते चले जाएंगे। आइए चलते हैं उनके ऐड की तरफ।
In trying to create the perfect granola, we knew that it had to be a healthy choice. Our granola is made with local honey, local maple syrup, and oats from local farmers. There's no salt, sugar, or preservatives added. We use 100% extra virgin olive oil to bake our granola. With these quality ingredients, our granola is one of the healthiest and great tasting. We hope you enjoy eating it as much as we enjoy making it. Purchase our dazzling products today, backed by our money-back guarantee. So order now from www.naturesmix.ca.
जी सामिन, naturesmix.ca पे ज़रूर तशरीफ ले जाएं, naturesmix.ca। और इसके कुछ फ़वाद हैं वो भी हम आपको अभी सुनवाएंगे कि इसके खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। ये प्रोडक्ट आपको हर, इसकी वेबसाइट पे जब जाएंगे नेचर्स मिक्स या अमेज़ॉन पे आप सर्च मारेंगे तो आपको आ जाएगा कि अमेज़ॉन की ये फेवरेट चॉइस है। ये प्रोडक्ट बहुत हेल्दी है, इसके खाने के बहुत सारे फ़वाद हैं, और ग्रनोला, और ये आपको उसके जो स्टोर्स हैं सोबीज, मेट्रो, फ्रेशको, होल सॉरी फ्रेशको और फार्म बॉयज़ पे मिल जाएगा, फूड बेसिक, तो इन जगहों पे ये मिल जाएगा। ख़ास तौर पे जो मिसिसागा में सुन रहे हैं तो वो 10th लाइन वाले सोबीज़ में भी जा सकते हैं। आइए इसके पहले फ़वाद सुनते हैं और फिर दोबारा प्रोग्राम में वापस आते हैं।
In trying to
और YouTube चैनल, मैं हूं पूजा लूथरा और आज मैं आपको बताऊंगी ओट्स के फायदे। दोस्तों, ओट्स प्रोटीन, फाइबर, आयरन, पोटेशियम और कैल्शियम का एक खजाना है, और कोलेस्ट्रॉल इसमें 0% होता है। एक स्वस्थ और सुदृढ़ शरीर पाने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। साथ ही साथ ये हमें कई जानलेवा बीमारियों से भी बचाता है। आइए जानते हैं ओट्स के हेल्थ बेनिफिट्स। दोस्तों, रिसर्च से पता चला है कि ओट्स हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और इनमें मौजूद पोटेशियम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायक है। इसलिए ओट्स हमारे हार्ट के, हमारे दिल के सच्चे मित्र हैं। ओट्स रेगुलरली खाने से हार्ट अटैक, स्ट्रोक आदि हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको छू भी नहीं पाएंगी। ओट्स में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज भी होती हैं और ये हमें सभी तरह के कैंसर से बचाता है। इसमें मौजूद फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल को भी ऑप्टिमम लेवल पर मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल है। इसलिए डायबिटीज के रोगियों को तो ओट्स जरूर अपनी डेली डाइट में शामिल करने चाहिए। ओट्स में बहुत कम कैलोरीज होती हैं, इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए इसे खाने से पेट काफी समय तक भरा रहता है। तो अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो रोज ब्रेकफास्ट में ओट्स खाइए और फिट और हेल्दी हो जाइए। ओट्स एक अच्छा स्ट्रेस बस्टर भी है। इसमें मौजूद फाइबर और मैग्नीशियम हमारे माइंड में सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे स्ट्रेस यानी तनाव कम होता है और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है। ओट्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसे दूध में मिलाकर लेने से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता और दही में मिलाकर लेने से दस्त और उल्टी एकदम रुक जाते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ा देता है, जिससे मौसम में परिवर्तन से होने वाली बीमारियां हमें छू भी नहीं पाती। ओट्स हमारी स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें नींबू का रस मिलाकर अगर चेहरे पर लगाया जाए तो चेहरे की रंगत निखरती है और ब्लैक हेड्स और एक्ने से भी बचाव होता है।
इंसान अपनी जिंदगी में दो अहम फैसले करता है, एक घरवाली का और एक घर खरीदने का। घर खरीदने के लिए मॉर्गेज चाहिए होता है। मॉर्गेज के लिए आप कांटेक्ट कीजिए प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा से। मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा, फोन नंबर है 4164278655। अगर आपका क्रेडिट खराब है, न्यू इमिग्रेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तब भी आपको मॉर्गेज मिल सकता है। फोन कीजिए 4164278655, सैयद आसिफ रजा।
जी साहब, इन प्रोग्राम सुन रहे हैं सैयद आसिफ रजा का, मुझसे रابطے का नंबर है 4164278655। एक दफा फिर जो लोगों के सवाल आए हुए थे अभी, ओके, जो घर ऑलरेडी उनके पास मॉर्गेज होता है और एक बड़ा मॉर्गेज होता है यार, 5 लाख रुपल्ली का, और आप चाहते हैं कि वो $5 लाख का जो है वो रीमॉर्गेज करके, इसमें 50,000, बच्ची की शादी आ रही है, बेटी की शादी आ रही है, कुछ आ रही है और आपको चाहिए सिर्फ $50,000-$60,000 है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उस बड़े मॉर्गेज को मत तोड़ें। इसलिए कि देखें, अगर आप उसको तोड़ेंगे तो नुकसान आपको होगा, फायदा मुझको होगा और बैंक को होगा, क्योंकि हम बड़ा मॉर्गेज कर सकेंगे। तो उसके बजाय उसको भैया एज इट इज रखें और आपका रेट भी उसमें अच्छा हुआ हुआ होता है, इंस्टॉलमेंट भी अच्छी होती है, पेनल्टी भी नहीं लगेगी तोड़ने की। अगर आपको $50,000-$60,000 की जरूरत आन पड़ती है तो आप उससे बेहतर है कि हमेशा उसको यूज करें कि आप छोटी सी लाइन ऑफ क्रेडिट अगर ले सकते हो या आपकी सेकंड उठा सकते हो, क्योंकि जो ज़रूरत आपको आन पड़ी है वो आप उसको कंप्लीट कर लें और जब आपकी मैच्योरिटी आए तो उनको मर्ज कर लें एक साथ दोनों को। बट अभी आप अगर 2-2.5 साल तक आपका रेट अच्छा है और पुराना मिला हुआ है, उसको ना तोड़ें, मेरा मशवरा यही है। मजीद मालूमात के लिए आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं 4164278655। एक दो कम्युनिटी अनाउंसमेंट आपके साथ शेयर करते हैं और फिर दोबारा प्रोग्राम में वापस आते हैं, उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।
इंसान अपनी जिंदगी में दो अहम फैसले करता है, एक घरवाली का और एक घर खरीदने का। घर खरीदने के लिए मॉर्गेज चाहिए होता है। मॉर्गेज के लिए आप कांटेक्ट कीजिए प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा से। मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा, फोन नंबर है 4164278655। अगर आपका क्रेडिट खराब है, न्यू इमिग्रेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तब भी आपको मॉर्गेज मिल सकता है। फोन कीजिए 4164278655, सैयद आसिफ रजा।
जी साहब, हम थोड़ी देर में हम एक मौलाना को भी ऑनलाइन लेंगे और जो ख़ास मजहबी अयाम आ रहे हैं उसके ऊपर गुफ्तगु भी होगी और उसके साथ साथ, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं एक मनकबत की तरफ। रजब अली की आवाज़ में है ये और फातिमा, तो इनकी आवाज़ में हम सुनते हैं और ये हम पहले भी लोग फरमाइश कर चुके हैं, तो आइए पहले सुनते हैं फिर दोबारा प्रोग्राम में वापस।
मुश्किल कुशा खुद अपना जिसे कहा है वो फातिमा है, वो फातिमा है, वो फातिमा है। हसन है जिसमें हुसैन भी है, नबी भी शाह हुनैन भी है। हसन है जिसमें हुसैन भी है, नबी भी शाह हुनैन भी है। वो जिसकी चादर में सारा आलम छुपा हुआ है वो फातिमा है, वो फातिमा है। अली ने मुश्किल कुशा खुद अपना जिसे कहा है वो फातिमा है, वो फातिमा है। सुला रही है वो शाहजादे मगर नहीं रुकते काम घर के। सुला रही है वो शाहजादे मगर नहीं रुकते काम घर के। वो जिसके बदले फरिश्ता चक्की चला रहा है वो फातिमा है, वो फातिमा है। अली ने मुश्किल कुशा खुद अपना जिसे कहा है वो फातिमा है, वो फातिमा है। या सैयदा या
फातिमा। समय प्रोग्राम सुन रहे हैं।
जनाबे आदम भी कह रहे हैं रब के बदले उसूल इसने। जनाबे आदम भी कह रहे हैं रब के बदले उसूल इसने। लिबास बच्चों का जिसकी जन्नत से जा रहा है वो फातिमा है, वो फातिमा है। फातिमा है जबान सज्जाद क्या बताए, ये बीबी किस किस का आसरा है। जबान सज्जाद क्या बताए, ये बीबी किस किस का आसरा है। अली ने मुश्किल कुशा खुद अपना जिसे कहा है वो फातिमा है, वो फातिमा है।
मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं सैयद आसिफ रजा का, मुझसे रब्ते का नंबर है 4164278655। और समय जैसा कि आपको पता है कि ये जो अयाम हैं ख़ास तौर पे जो 19 अक्टूबर को चेहलू में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ रहा है और इसको बड़ी दुनिया में, पूरी दुनिया में बड़ी अकीदत के साथ और मनाया जाता है। और हमारी ये कोशिश होती है कि जब इस किस्म के अयाम आएँ और ख़ास तौर पे इस वक्त मीडिया में, सोशल मीडिया में और टीवी में हर जगह ख़ास तौर पे अरबईन जिसे कहा जाता है चेहलुम, उसका बहुत ही चर्चा है, हर जगह जिक्र डिस्कशन हो रहा है। तो बहुत से हमारे प्रोग्राम नॉन मुस्लिम भी सुन रहे होते हैं और बहुत से अहले सुन्नत भाई भी हैं जो अरसे दराज से यहाँ पर हैं और कुछ हो सकता है वो ज़्यादा टच ना हो क्योंकि ऐसे ज़माने में वो यहाँ आ गए हों कि जब उनकी जो एज है या उनकी जो कम हो और उनको ज़्यादा इस इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, तो इसी सिलसिले में हमने अपने साथ ऑन एयर एक आलम दीन जो इस वक्त पाकिस्तान के मशहूर सैयद मोहम्मद ऑन नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त कैनेडा तशरीफ लाए हुए हैं, कैलगरी और इंशाल्लाह टोरंटो भी तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मौलाना।
वालेकुम अस्सलाम।
जी जी मौलाना साहब, मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में रहने का, और हम चाहेंगे क्योंकि ये ऐसे अभी अय्याम आने वाले हैं चेहलुम का, उसमें उससे पहले मैं आपके पास जाने से पहले एक कम्युनिटी अनाउंसमेंट मैं करता चलूं कि दो इवेंट जो इम्पोर्टेंट टोरंटो में होने वाले हैं इसी हवाले से, चेहलुम इमाम हुसैन के हवाले से, इनका बताते चलें कि ये बरोज़ इतवार 30-20 अक्टूबर एक वॉक होती है, अरबईन वॉक, वो अभी हम मौलाना से भी मालूम करेंगे ये वॉक के बारे में, जो नजफ से करबला तक लोग पैदल चल के जाते हैं, और बल्कि इराक में जो लोग रहते हैं वो कहाँ कहाँ से रख जाते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, मौलाना हमसे ज़्यादा आपको बेहतर बताएंगे। लेकिन जो टोरंटो में उसी को वॉक को नज़र में रखते हुए यहाँ पे भी इनकाद हुआ है, जो अहल सुन्नत और अहल तशई हैं वो मिल के एक वॉक करते हैं, इमाम हुसैन को ट्रिब्यूट पेश करते हैं, और उनकी जो स्टार्ट होती है वो 1 बजे स्टार्ट होती है ये 20 अक्टूबर को, और इसका जो मकाम है वो है स्ट्रेचन एवेन्यू टोरंटो, और इख्तिताम जो है वो वन स्ट्रेचन एवेन्यू टोरंटो, और इख्तिताम है इसका 3-2-1 यूनिवर्सिटी एवेन्यू टोरंटो पे। और रास्ते भर जो वॉक में जाहिर बात है फ्लायर्स बांटे जाते हैं, डिस्प्ले बैनर्स लिए हुए होते हैं, लोगों को इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है कि ये हुज़ हुसैन, हुसैन कौन है और इनका चेहलुम हम मना रहे हैं ये कौन है, और यही सवाल हम मौलाना के पास भी चलते हैं। मौलाना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में आप इस तरह से बताइए कि जो लोग नहीं जानते, ख़ास तौर पे जो नॉन मुस्लिम हैं वो भी समझ सकें ये हैं कौन। जी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप एक अहम मौजू पर आवाम को अवेयरनेस देने के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद फरमा रहे हैं, और खुदा आपको हर बला मुसीबत से और सुनने वालों को हर बला मुसीबत से महफूज रखे। गुजारिश ये है कि ये तो अब सारी दुनिया जानती है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को दीन फितरत पे पैदा किया है, यानी दीन इस्लाम पर, दीन फितरत पर हर इंसान पैदा हुआ है। जब भी वो अपनी फितरत की तरफ लौटेगा तो वो समझेगा कि हकीकत क्या है, और अल्लाह ने इंसान की हिदायत के लिए, इंसानियत की हिदायत के लिए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अंबिया अलैहिस्सलाम का एक सिलसिला रखा, और हर कौम कबीला, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, यहूदी हो, नसरानी हो, हिंदू हो, सिख हो, जितने भी अकवाम आलम हैं वो तमाम जानते हैं कि हिदायत करने के लिए किसी न किसी रहबर का होना जरूरी है, और हर कौम कबीले में, हर मसलक में, हर मजहब में, हर दीन में चाहे नाम बदल लें लेकिन रहबर जरूर मौजूद है, उन्हीं रहबरों को इलाही नुमाइंदे कहा जाता है। तो इस्लाम में उन्हें अंबिया अलैहिस्सलाम कहा जाता है, और अंबिया अलैहिस्सलाम में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा करने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद, उनके जो हुजूर पाक ने दावत ज़ुल-अशीरा से लेके और फिर हर मुकाम पर और फिर गदीर के मैदान तक, और फिर कुरान मजीद में कई आयात हैं जो मौला अली अलैहिस्सलाम की नायब रसूल होने की और इमाम मुबीन होने की और हुज्जत खुदा होने की और उनके नुमाइंदों का बकियतुल्लाह होने की, ये सारी आयात उलिल अम्र होने की कुरान मजीद में मौजूद है। तो यानी नबी पाक के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने गोया रहबर मुकर्रर किया, क्योंकि नबूवत का खात्मा हो गया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और फिर अल्लाह ने नबूवत के बाद इमामत का एक बंद बांधा है ताकि कोई और नबी पैदा ना हो सके। यही सबब है कि जो अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं उनके यहाँ कोई और नबी नहीं आया, लेकिन जो अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले इस माना में नहीं है कि उनको पहला इमाम या पहला खलीफा मानते हो, तो उनके यहाँ फिर आपने देखा कि गुलाम अहमद कादियानी और बहुत सारे जो है ना नबी पैदा होते रहे। تو ہمارا جو پیغام دینے کا مقصد ہے وہ یہ کہ مولا علی علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام اور ان کے بعد امام حسین علیہ السلام نے دین کی باگڈور سنبھالی اور اللہ کی طرف سے وہ نمائندے قرار پائے, اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام, جن کا اصلی نام علی بن الحسین ہے, کیونکہ مولا حسین نے اپنے سارے بیٹوں کے نام علی پر رکھے تھے اور اپنی ساری بیٹیوں کے نام فاطمہ پر رکھے تھے, اور کنیات اور القابات مختلف ضرور ہیں. تو امام زین العابدین علیہ السلام اور مولا علی کی بیٹی جناب زینب علیہ السلام علیہا, یہ کربلا میں جب شہادتیں ہو گئیں تو اس کے بعد انہیں اسیر کر لیا گیا, اور یہ اسیر ہو کر ایک سال اور 40 دن تقریباً جو ہے وہ قید خانے میں رہے, اور اس کے بعد جب رہائی پا کر یہ واپس آئے تو یہ 40 کا دن کہلاتا ہے. ان سننے والوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جنہیں بقول آپ کے پتہ نہیں ہے کہ یہ 40 کیا ہے, کہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے مولا سجاد, یعنی جن میں علی بن حسین کہا جاتا ہے, وہ اور جناب زینب عالیہ اور ان کے ساتھ جتنی بھی بیویاں بچ گئی تھیں, جتنے بچے بچ گئے تھے, وہ امام محمد باقر علیہ السلام یہ رہائی پا کر ایک سال 40 دن کے بعد جب واپس کربلا آئے اسے کہا جاتا ہے واقع 40, کیونکہ وہ کربلا میں پہنچے تھے چیلم کے دن, اور چیلم کے دن جو ہے وہ ان کی یاد میں پوری دنیا میں جو ہے وہ واق کی جاتی ہے, تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ کربلا میں ظالموں نے کن کو مارا اور کس وجہ سے مارا اور ان کا قصور کیا تھا, سوائے اس کے کہ وہ دین الہی کا پرچم بلند کرنا چاہتے تھے, انسانیت کو ماں بیٹی کا ادب سکھانا چاہتے تھے, وہ برائیوں سے بچانا چاہتے تھے اور خرافات سے دور کرنا چاہتے تھے, حریت کا درس دینا چاہتے تھے اور ایک بہترین انسان بن کر زندگی گزارنے کا لوگوں کو سبق دینا چاہتے تھے امام حسین علیہ السلام, اور وہ ان کو بے دردی سے
مولانا کی لائن ایک طرح سے کٹ گئی, ہم دوبارہ ان کو لیتے ہیں, لیکن سامعین جو پروگرام سن رہے ہیں مولانا صاحب کا یہی ہے کہ یہ جو ان کا جو امام حسین علیہ السلام ہیں یہ نواس رسول ہیں, اور انہی کے عقیدت جوش عقیدت سے یہ ان کے لیے منایا جاتا ہے. آئیے ایک کمرشل بریک لیتے ہیں اور پھر دوبارہ پروگرام میں واپس آتے ہیں. یہ گرینڈ سن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین, ان کے یاد میں یہ منایا جاتا ہے. ایک کمرشل بریک اور پھر دوبارہ پروگرام میں ہم واپس آتے ہیں اور پھر آپ کو اس کے بارے میں بگائی دیتے ہیں.
انسان اپنی زندگی میں دو اہم فیصلے کرتا ہے, ایک گھر والی کا اور ایک گھر خریدنے کا. گھر خریدنے کے لیے مارٹگیج چاہیے ہوتا ہے. مارٹگیج کے لیے آپ کانٹیکٹ کیجیے پروفیشنل سید آصف رضا سے. مارٹگیج پروفیشنل سید آصف رضا, فون نمبر ہے 4164278655. اگر آپ کا کریڈٹ خراب ہے, نیو امیگرینٹ ہیں, سیلف امپلائڈ ہیں, تب بھی آپ کو مارٹگیج مل سکتا ہے. فون کیجیے 4164278655. سید آصف رضا.
سامعین یہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں مولانا کو دوبارہ لائن پہ لیں اور فون لائن پر اور ہمارے ساتھ ہوں, اور جیسا کہ مولانا ذکر کر رہے تھے یہ ذکر ہو رہا ہے امام حسین علیہ السلام کا, اور یہ کون ہیں جو لوگ نان مسلم ہیں, جو لوگ زیادہ نہیں جانتے ان کے لیے کہ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے ہیں, یعنی گرینڈ سن, ان کی بیٹی کے اکلوتی بیٹی, ایک ہی بیٹی تھی ان کی جو ان کے یہ صاحبزادے. مولانا صاحب 40 چہلم کے بارے میں آپ کا ڈسکشن چل رہا تھا, تو اس کا مقصد ہے کہ عاشور جب شہادت ہوئی, یعنی جو ہم 10 محرم کہتے ہیں, اس کے بعد سے اب تک, اور کیونکہ لوگ وہ جو یزید کے جو سپاہ تھے وہ لے گئے تھے سب کو حراست میں لے کے, تو اس وقت سے لے کے اب تک ان کا جست خاکی اور ان کے ساتھ جو لوگ 72 شہید ہوئے تھے ان کو کیا دفنایا نہیں گیا تھا, یا اس کا کیا بیان کیجیے؟
نہیں, اس سلسلے میں تاریخ میں ساری چیزیں موجود ہیں. گزارش یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں آ کر زمین خریدی تھی وہاں کے رہنے والوں سے, جنہیں کہا جاتا ہے بنی اسد, تو ان سے زمین خریدی تھی 61,000 دینار میں اس وقت, اور یہ بتایا تھا امام حسین علیہ السلام نے کہ دشمن کی سرزمین پہ مرنا بھی ننگ ہے, ہم لوگ قتل ہوتے ہیں مقتل خرید کر. امام حسین علیہ السلام نے مقتل کو خریدا تھا, یعنی کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ امام حسین علیہ السلام سرکاری زمین پہ جو ہے وہ دفن ہو گئے.
سبحان اللہ.
میں نے بتایا کہ میں جو زمین پہ جہاں میری قبر بنے گی, جہاں میرے ساتھیوں کی قبر بنے گی, جہاں میرے دل بندوں کی قبریں بنیں گی, جہاں میرے لال دفن ہوں گے, وہ زمین ہم اپنی خود خریدیں گے تاکہ کل کو آنے والا زائر یہ نہ کہے کہ امام حسین علیہ السلام کسی غصب شدہ زمین پر ہیں یا سرکاری زمین پر ہیں.
کیا بات.
حالانکہ سرکار تو خود ان کی سرکار ہے, خود ان کے بابا کائنات کے امام ہیں اور ان کے نانا کائنات کے رحمت ہیں. ویسے تو پوری کائنات امام حسین علیہ السلام کی ہے, جنت کے جو سردار ہوں ان کے لیے دنیا کیا حیثیت رکھتی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے اس زمین کو خریدا اور خرید کے بنی اسد کے لوگوں سے کہا کہ جب ہم یہاں شہید ہو جائیں تو تم ہمیں یہاں دفن کر دینا ہماری لاشوں کو. پھر ان سے کہا کہ اگر تمہیں کوئی خوف ہو تو پھر ان کی خواتین سے کہا کہ تم پانی بھرنے دریائے فرات پہ آنا اور اس بہانے سے ہی ہم پر مٹی ڈال دینا. پھر ان بچوں سے کہا کہ اگر تمہارے ماں بھی نہ آ سکیں, باپ بھی نہ آ سکیں, تو تم کھیلتے کھیلتے آنا اور ہماری لاشوں پر مٹی ڈال دینا. یعنی امام حسین علیہ السلام نے تمام حجتیں پوری کی اور یہی سبب ہے کہ بنی اسد کے لوگوں نے 11 محرم کو اور پھر 12 محرم کو تمام لاشوں کو وہیں پر دفن کیا. لیکن کیونکہ سروں کو کاٹ کے یہ ظالم لے گئے تھے اور نوک کے نیزہ پر بلند کر کے انہی بیویوں کے آگے آگے ان نیزوں کو چلاتے تھے کوفہ اور شام کے بازاروں میں, اور اس کے بعد جب شام سے رہائی نصیب ہوئی, چونکہ انقلاب بپا ہو رہا تھا, میڈیا کا دور نہیں تھا, انٹرنیٹ ویب سائٹ اور واٹس ایپ کا اور فیس بک کا اور یوٹیوب کا دور نہیں تھا, اس لیے لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چل رہا تھا کہ کربلا میں جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام جو کہ نواس رسول ہیں, جن کو رسول پاک اپنے کاندھوں کے سوار کراتے تھے, دوران نماز پشت پہ مولا حسین بیٹھ جاتے تھے, رحمت اللہ العالمین سرکار کی پشت پر اور مولا ناز برداری میں سجدے کو طول دے دیتے تھے. وہ اس حسین کو جو ہے اور اس کے بچوں کو کربلا میں شہید کر دیا گیا. یہ آہستہ آہستہ خبر جو ہے وہ پورے عرب میں پہنچ رہی تھی اور لوگوں میں انقلاب پیدا ہو رہا تھا کہ یزید جیسا ظالم اور اس نے جو ہے کتنا بڑا گناہ کبیرہ کیا ہے اور وہ جہنمی بن گیا ہے کہ اس نے جو ہے وہ نواس رسول کو شہید کیا. تو یہ جب خبر عام ہوئی تو لوگ جو ہیں ان سروں کو چھیننے کے لیے ان جو محبت کرنے والے تھے گاؤں میں رہنے والے وہ آتے تھے. تو اس لیے یہ جو سپاہی یزید کے لوگ تھے وہ ان سروں کو نو کے نیزہ پر بلند رکھتے تھے کہ کوئی ہم سے چھین کے نہ لے جائے, اور یہ عرب کا ایک دستور بھی تھا, ایک ظلم کا ایک اور طریقہ بھی تھا. تو یہ جب شام پہنچے اور شام میں پھر جب انقلاب بپا ہو گیا تو یزید نے مجبوراً رہائی کا حکم دیا, اور جب رہائی ہوئی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے مولا سجاد علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس وقت تک رہا نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمارے شہیدوں کے سر ہمیں نہیں دیے جائیں گے. تو اس طرح سے درمیان درمیان میں
جی
بہت سے لوگ ان سروں کو چھین کے لے گئے تھے, کوئی مصر لے گیا تھا, کوئی شام لے گیا تھا, کوئی کہیں لے گیا تھا, اور اس کے بعد پھر وہاں کچھ عرصہ رہے, کہیں عیسائیوں کے تندوروں میں رکھے گئے, کہیں ان کو سروں کو دفن کر دیا گیا. پھر مولا سجاد علیہ السلام نے جو سر چھین لیے گئے تھے ان سروں کو واپس لیا, اور رہائی کے وقت یہ سارے کے سارے سر, یہ ایک میں تاریخی حقیقت بیان کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا سر جو ہے وہ فلاں شہر میں, فلاں ملک میں, مصر میں ہے, تیونس میں ہے, فلاں جگہ ہے یا قاہرہ میں ہے, نہیں, امام حسین علیہ السلام کے سر کے ساتھ بے حرمتی بہت کی گئی, ظلم بہت کیا گیا, لیکن یہ مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا آخر مولا سجاد علیہ السلام نے اس سر کو اسی جگہ دفن کیا جہاں مولا حسین علیہ السلام کی قبر اتھر ہے. تو مولا کے تمام ساتھیوں کے سر بھی انہی جگہوں پر بعد میں دفن کیے گئے جہاں ان کی کربلا میں اصل قبریں ہیں, گنج شہیدہ ہو یا شہزاد علی اکبر کا سر مولا حسین ہی کے قدموں میں ہے گویا جہاں آپ کا جسم ہے, اور شہزاد علی اصغر کا سر بھی وہیں پر ہے سرحانے کی طرف مولا حسین علیہ السلام کے سیدھے بازی کی طرف انہی کی, کیونکہ یہ واحد قبر ہے جس میں تین ایک ساتھ فرزند نبی سو رہے ہیں, ایک امام حسین علیہ السلام, ایک شہزاد علی اکبر اور شہزاد علی اصغر, یہ تینوں باپ بیٹے جو ہیں وہ ایک ہی قبر میں ہیں, ایک ہی زری کے اندر ہیں. اسی لیے ہم جب کربلا جاتے ہیں تو پیروں کی طرف جناب علی اکبر کی زیارت پڑھتے ہیں اور سرحانے کی طرف مولا حسین اور جناب علی اصغر کی زیارت پڑھتے ہیں. تو یہ سارے سر اور یہ جسم انہی جگہوں پر دفن ہیں جہاں ان کی اس وقت قبریں ہیں, اور اس طرح سے ان کے جسموں کو جو ہے وہ امام سجاد علیہ السلام کے اذن سے دفن کیا گیا.
مولانا صاحب, یہ جو واک ہوتی ہے اس کو جو اس وقت نجف سے کربلا لوگ ابھی بھی ہم اگر ہم یوٹیوب پہ سرچ کریں واک ٹو کربلا, نجف سے کربلا جو ہو رہی ہے, یہ کتنے اس میں سنا ہے کہ صرف اہل تشیع نہیں, اہل سنت بھی, کرسچن بھی سب شامل ہوتے ہیں, تو اس کی کیا تعداد, کیا ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے آج تک, کیا خبریں آپ کی؟ جی
دیکھیے, میں عرض کروں امام حسین علیہ السلام صرف شیعوں کے نہیں ہیں, امام حسین علیہ السلام پوری کائنات کے ہیں
بے شک,
اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں عیسائی بھی تھے جو اس وقت وہاں آئے تھے, جیسے کہ راہب ہیں, جیسے کہ وحد قلبی ہیں, جیسے کہ اور بہت سے ہیں, وہ آئے اور نانا حسین علیہ السلام کی حقانیت کو دیکھ کر ان کے نانا کا کلمہ پڑھا اور اس کے بعد شہید ہو گئے اور آج تک علیہ السلام ہو گئے. تو اس وقت میں عیسائی بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, آپ کے شیعہ بھی ہیں, سنی بھی ہیں, حتیٰ کہ وہ دیوبندی حضرات بھی ہیں جو عام طور پر دیوبندیوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس قسم کی گویا عبادات میں شامل نہیں ہوتے, بدعت سمجھتے ہیں. لیکن اس واقع میں ہم نے دیکھا ہے پاکستان سے بہت سارے منصف مزاج اہل حدیث اور دیوبندی بریلوی حضرات جو ہیں وہ صرف یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ آخر ہم دیکھیں تو صحیح کہ کربلا میں ملتا کیا ہے اور کربلا میں ہوتا کیا ہے. اور اس واقع میں اس وقت جو میری اطلاع کے مطابق ہے وہ 4 کروڑ سے زیادہ کی تعداد جو ہے وہ کربلا میں پہنچ رہی ہے, یہ چھوٹی تعداد نہیں ہے. اور حیرت کی بات ہے
کیونکہ مولانا 22 ملین یعنی 2 کروڑ 20 لاکھ تو ویکیپیڈیا میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آیا ہوا ہے, لیکن یہ تو
میں یاد کروں, یہ جو بین الاقوامی میڈیا ہے وہ کچھ تعداد کو جو ہے کم کر کے بیان کر رہی ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی تو لوگ نکل رہے ہیں, یہ تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جو باہر سے آ رہے ہیں, ایران سے آ رہے ہیں, عراق سے آ رہے ہیں, اور میں آپ سے عرض کروں بہت سارے لوگ مشہد سے پیدل جا رہے ہیں کربلا, مشہد سے, مشہد ایران کا شہر, اور بہت سارے لوگ جو ہیں قم سے پیدل جا رہے ہیں, اور کئی لوگ تو پہنچ چکے ہیں وہاں پیدل, جو کہ کئی کئی مہینوں کا پیدل کا سفر کر کے جا رہے ہیں. یہ تو جو واق ہوتی ہے نجف سے کربلا تک وہ تو 3 دن میں 4 دن میں 5 دن میں
کمپلیٹ ہو جاتی ہے. جی بالکل صحیح کہا, جی جی,
تو وہ 5 دن میں حت الوسا جو ہے وہ 5 دن میں مکمل ہو جاتی ہے. لیکن 4 کروڑ کی جو تعداد ہے جو سرکاری نہیں ہے لیکن جو غیر سرکاری تعداد گروپس لیڈرز اور مختلف لوگ بتا رہے ہیں وہ تو ہو چکی ہے, اور اب آگے جو ہے وہ کتنی تعداد بڑھتی ہے. ابھی عراق والے جو مختلف شہروں سے جو قریب کے لوگ ہیں وہ نزدیک کے لوگ ہیں وہ بات کریں گے, تو یہ کہاں سے کہاں جو ہے تعداد پہنچے گی. میں یہاں پر کیلگری میں ٹی وی چینل میں گزشتہ دنوں پروگرام کر رہا تھا,
جی,
تو یہی سوال ایک وہاں کے ہوسٹ نے کیا, ہمارے بھائی ہیں یہاں پر حسن نواب صاحب جو کیلگری امام بارگاہ کے بانی ہیں, ان کے ساتھ ساتھ سے تو اس نے پوچھا کہ آخر کیا کربلا میں یہ ہندو عیسائی مسلمان شیعہ سنی وہابی دیوبندی ساری دنیا کے لوگ کربلا کیا لینے جا رہے ہیں؟
کریکٹ.
تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا,
میں بھی یہی پوچھنے والا تھا آپ سے, یہ کیا اتنے لوگ لے کے جا رہے ہیں اور کس طرح سے سمجھ آتے ہیں مولانا, اور وہ کربلا کا اگر لوگ ایریل ویو دیکھیں صرف ٹائپ کریں تو وہ اتنی سی جگہ ہے جہاں پہ یہ حرم ہے, جہاں پہ ان کے شرائن ہیں حضرت عباس علیہ السلام کے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے, اس میں لیٹ سے اگر ہم 2 کروڑ سے 3 کروڑ بھی کہہ دیں یا 4 کروڑ جیسے آپ کہہ رہے ہیں, یہ ایون 2 کروڑ رکھ لیں آپ, کم سے کم بھی رکھ لیں, یہ سماتے کیسے ہیں؟ ان کا سب کھانا پینا رہنا, یہ سب واش روم فیسلٹیز, یہ کس طریقے سے کر پاتے ہیں مولانا؟
میں عرض کروں یہ ایک معجزہ ہے, لیکن اس سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ جو خراج عقیدت پیش کرنا ہے دنیا بھر کے لوگوں کا, یہ مجھ سے یہاں کسی نے سوال کیا تو میں نے عرض کیا کہ مولا حسین علیہ السلام کے والد مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ मैं ऐसे अल्लाह की इबादत नहीं करता जिसे देखा ना हो. तो हैरत करने लगा साहिल के क्या अल्लाह ताला को देखा जा सकता है. तो इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हाँ, अल्लाह ताला को मैंने जाहिरी आंखों से नहीं देखा, दिल की आंखों से देखा है. इसका मतलब क्या हुआ कि दिल की आंखों से देखा जा सकता है अल्लाह को मार्फत के तहत. तो मैंने ये जुमला कहा जो आपके रेडियो के वसात से आपके सुनने वालों की खिदमत में अर्ज करूंगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम पे जाकर, करबला जाकर दुनिया से करोड़ों अफराद दिल की आंखों से अल्लाह को देखने जा रहे हैं.
सुभान अल्लाह, सुभान.
बस जो अल्लाह को दिल की आंखों से, मार्फत की आंखों से देखना चाहता है वो करबला चला जाए, उसे वहां अल्लाह दिल की आंखों से नजर आएगा. इसलिए कि 1400 साल पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन्हीं बनी असद के लोगों से कहा था कि आप जो है मेरे जायरीन को मेहमान रखना 3 दिन तक. तो मैं कहा करता हूं कि सद्दाम की हुकूमत खत्म होने के बाद, आज 1400 साल के बाद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो ख्वाहिश पूरी हो रही है कि अब वहां के लोग, इराकी लोग किस तरह से जायरीन की खिदमत कर रहे हैं, मेहमान रख रहे हैं, घर खोल देते हैं, अपने वॉशरूम खोल देते हैं, अपने तमाम कि जिसको आना है जो चाहे आए और जो चाहे हमारा मेहमान बन जाए. ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तमन्ना आज पूरी हो रही है. और जहां तक आपने पूछा है कि इतने से शहर में कैसे समो जाते हैं ये कैसे? 2 करोड़ भी चले बकौल आपके, 2 करोड़ भी मान लें,
20 मिलियन तो, भी हम ले लें अगर, तो समझ से बाहर है.
हालांकि मक्का शहर जो है, मदीना शहर जो है, वो करबला से बड़े
जी,
और वहां 35 लाख का मजमा जो है वो संभलता नहीं है सऊदी गवर्नमेंट से. और यहाँ जो है माशाल्लाह करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं और खराज अकीदत पेश करके, मातम करके, गिरिया करके, अपना जिसका जो अंदाज है सलाम करके, और कुछ नहीं तो ईसाई ईसाइयों की तरह या हिंदुओं की तरह या गैर मुस्लिमों की तरह सर झुका के और अपने अदब का इजहार करके इमाम हुसैन सलाम को खराज पेश करके जाते हैं. कैसे जाते हैं ये एक मौजजा है. और वो मौजजा अगर मैं बयान करूं तो गलत नहीं होगा कि अल्लाह कादिर मुतलक है,
बेशक
वो गैर महसूस तरीके से ये करबला शहर बड़ा हो जाता है, यानी फैल जाता है. और ऐसे फैल जाता है कि उसके अंदर करोड़ों की तादाद में लोग आ जाते हैं, कोई तिल धरने की जगह नहीं होती, गली कूचों में और लोग होते हैं. और आप देखेंगे वहां जो कपड़ा बेचने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि सबसे ज्यादा जो वहां कपड़ा बिकता है वो कफन का कपड़ा बिकता है. यानी वो लोग जो उस हुसैन को जिसे कफन नहीं दिया गया था, आज करबला में लोग लेने ही कफन जाते हैं.
सुभान अल्लाह.
हम जो है वहां से कफन लेकर आए ताकि उस बेकफन की याद में जब हम वो कफन पहनेंगे तो यकीनन खुदा उस हुसैन के नाम पर हमें बख्श देगा और कब्र में हमें सुकून और इत्मीनान अता करेगा.
सुभान.
तो अगर कोई ये कहे कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि जमीन फैल जाए, तो मैं सिर्फ उनकी खिदमत में इतना सवाल करूंगा कि जो हज पे गए हैं, मेरे ख्याल में मुझे याद है कि आपने भी हज किया है, जो हज पर गए हैं वो जानते हैं कि हाजी जो है वो 9 ज़िलहज को मैदान अरफात में
बिल्कुल
इबादत करते हैं और वहाँ खुतबा पढ़ा जाता है मस्जिद नुमरा से. और अरफात में वो भी जगह है जहाँ जिसे जबल रहमत कहा जाता है. तो अरफात का इलाका बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कहते ये हैं और मुस्तनद रिवायत है, इसको शिया सुन्नी तमाम हजरात उलमा तस्लीम करते हैं कि अरफात के मैदान में कयामत का मैदान सजेगा. यानी अरफात में कयामत सजाई जाएगी. इसीलिए हज पे जाके लोग वहां तौबा करते हैं, बाहर खड़े होकर जेर आसमान तौबा और अल्लाह से माफी मांगते हैं कि या अल्लाह उसी मैदान में जहां तूने हमें खड़ा करना है कयामत के दिन, उसी मैदान में मेहरबानी करके हमें माफ कर दे. मेरा सवाल यह है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और इस वक्त तक और इस वक्त से लेके कयामत तक अरबों की तादाद में, खरबों की तादाद में जो है वो इंसान पैदा हुए हैं और मैदान कयामत में सिर्फ
उसी जगह समाए जाएंगे. वाह वाह वाह.
मुसलमान ही नहीं जाएंगे, सारे कौमें जाएंगी, चाहे वो ईसाई हो, हिंदू हो, यहूदी हो, सिख हो, मुसलमान हो, और फिर जितनी भी अकवाम है वो सारी की सारी, अब अंदाजा लगाइए कि उस मैदान में अरबों की तादाद में लोग होंगे आदम से लेकर कयामत तक, तो वो इतने से मैदान में कैसे समो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह कयामत के दिन अपनी कुदरत से उस मैदान अरफात को वसी कर देगा,
वसी कर देगा,
इतना वसी कर देगा कि सारे लोग उसमें समो जाएं, फिर उनका हिसाबो किताब हो। इसी तरह से वो अल्लाह, अल्लाह देखें कुरान में मिसालें देता है ना, हजरत मूसा की मिसाल है, हजरत ईसा की मिसाल है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, अंबिया अलैहिस्सलाम की मिसालें हैं। इसी तरह करबला की मिसाल इस वक्त आंखें खोल के देखने वालों के लिए और दिल को कुशादा रख के देखने वालों के लिए, मुनसिफ मिजाज लोगों के देखने के लिए अल्लाह ने एक निशानी दी है कि आज देखो 4 करोड़ का मजमा जब एक छोटे से शहर में आ सकता है, तो कयामत में छोटे से अरफात में अरबों लोग भी आ जाएंगे जहां मैं हिसाबो किताब लूंगा।
क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सामीन प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सैयद आसिफ रजा का, मुझसे राब्ते का नंबर है 4164278655। हमारे साथ मौलाना सैयद मोहम्मद और नकवी साहब मौजूद हैं और जो इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को टोरंटो में तशरीफ ला रहे हैं और यहाँ पे वो बाबुल इल्म इमाम बारगाह जो 900 एग्लिंटन पे वहाँ पे खिताब भी करेंगे। और इस वक्त इनके छोटे भाई मौलाना सैयद मोहम्मद सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब भी यहाँ हैं टोरंटो में आजकल, और वो भी इस वक्त 900 एग्लिंटन बाबुल इल्म में रात को 9 बजे ख़िताब करते हैं और साथ साथ 7 बजे हुसैनिया पासपोर्ट जो स्कारब्रो में है वहाँ पे भी उनका ख़िताब होता है। और इंशाल्लाह दोनों भाई की खिदमत जो है वो वाकई इस वक्त काबिल तहसीन है, जिस तरीके से दोनों भाई और ख़ास तौर पे इनके वालिद साहब जो हैं वो मेरे फेवरेट हैं, जो मैं कराची जाता हूँ जब उनसे मिलता हूँ। मौलाना साहब उनको बहुत बहुत मेरा सलाम कीजिएगा पापा को, और आप भी जब इंशाल्लाह आएंगे आपसे मुलाकात होगी यहाँ पर, हम सब आपके मुंतज़र हैं। और मौलाना साहब से कॉन्टैक्ट का नंबर अगर कोई करना चाहता है तो उनका नंबर है मौलाना साहब का 4034725628। एक दफा फिर दोहरा देता हूं 4034725628। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का,
अल्लाह
सलामत। आइए एक अमजद साबरी की आवाज में एक मनकबत सुनते हैं और फिर जल्दी से दोबारा प्रोग्राम में वापस आते हैं।
खुशी से सर पकटाए कोई तो मैं जानू, खुद अपने घर को लुटाए कोई तो मैं जानू, बशर जहां में खुदा भी बने नबी भी बने, बशर जहां में खुदा भी बने नबी भी बने, हुसैन बन के दिखा रहे न पूछिए कि क्या हुसैन है, खुदा के दी का ना खुदा हर इब्तदा की इब्तदा, करम की इंतहा हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन है। जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है, ये पंचतन की अंजुमन का पांचवा चराग है, हसन का पहला हम सफर अली का दूसरा फिसर, इमाम तीसरा हुसैन है, इमाम तीसरा हुसैन है।
समय इसको हम अभी दोबारा रखेंगे, प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले हम इसको चलाएंगे दोबारा से, लेकिन एक हम जल्दी से कॉलर को ले लेते हैं और उनकी बात सुनते हैं। जी सलाम अलैकुम।
जी वालेकुम सलाम आसिफ भाई, फारूक बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप?
जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फारूक भाई।
मैंने अभी आपने जो जिक्र किया प्रोग्राम में हजरत इमाम हुसैन के चैलम के हवाले से अरबाइन, जिसको एक मखसूस नाम से पुकारा जाता है, मुझे वैसे इतफाक हुआ यूट्यूब के ऊपर देखने का, यकीन जाने जिस मोहब्बत अकीदत के साथ लोग इस वाक में कहें कि शामिल होते हैं वो واقعی قابل تحسین ہے, یقین جانے میرا خود دل کرتا ہے کہ مجھے موقع ملے اور میں بھی اس میں شامل ہوں. تو میں ذرا یہ جسٹ پوچھنا چاہ رہا تھا, یہ جو ابھی آپ نے بیان کیا ٹورنٹو میں, یہ اس کا ٹائم اور اسکیڈول ذرا بتائیں گے آپ؟
جی سر, میں دو پروگرام فاروق بھائی دو پروگرام ہونے جا رہے ہیں, اور جو ظاہر بات ہے ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں دل سے, اور وہ ظاہر بات ہے ان کے نواسے امام حسین سے بھی محبت اور مودت رکھتے ہوں گے, اور وہ سارے لوگ اس پہ, اور جیسے آپ نے سوال کیا ہے تو دو چیزیں ہو رہی ہیں, ایک تو اربعین کا جلوس ہوتا ہے جو پاکستان انڈیا میں ہوتا ہے, وہ سیٹرڈے کو اکتوبر 19 تین بجے ہوگا پاسمور کی جو یہ جگہ ہے ملکن پارک وے کریشن سینٹر, ریکریشن سینٹر سکاربرو سے اسٹارٹ ہوتا ہے, اور اس کا ایگزیکٹ ایڈریس ہے 4325 مکاون روڈ, اور یہ کارنر آف مکاون اور سٹیلز پہ ہے. تو یہاں سے برآمد ہوگا 19 اکتوبر یعنی سیٹرڈے کو, اور دوسری جو واک ہے وہ ہے ون اسٹریچن, وہ ٹورنٹو سے میں ہوگی اسٹریچن ایونیو, یہ ہے 20 اکتوبر کو 1 بجے نماز کے بعد. تھینک یو فاروق بھائی, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. سامنے آپ پروگرام سن رہے ہیں سید آصف رضا کا, مجھ سے رابطے کا نمبر ہے 4164278655. ایک اور بڑی کمیونٹی کی محبوب ہستی جو ہے وہ اس دنیا سے چلی گئیں, یہاں پر ہمارے ایک ٹورنٹو میں ہوتے تھے قاسم حسینی بھائی, یہ 1970 میں انہیں نے آ کے یہاں پر ایک اپنا ہی گھر کو انہوں نے اس کو مسجد اور امام بارگاہ میں کنورٹ کیا, اور ساری زندگی دونوں میاں بیوی اور خاص طور پہ جو قاسم حسینی بھائی ہیں ان کا انتقال ہو گیا, ہم بہت اخرا ان کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, اور جو جو اپنی جگہ ان کے لیے سورہ فاتحہ ضرور پڑھ لیں. سامعین آپ پروگرام سن رہے ہیں سید آصف رضا کا, ہمارا پروگرام کا ٹائم بھی اب ختم ہوا جاتا ہے, اور امجد صابری کی ہمارے ساتھ جو کالر بھی ہیں جلدی سے لے لیتے ہیں ان کو, ایک ایک. جی السلام علیکم. ہلو,
آصف بھائی بات کر رہے ہیں؟
جی بول رہا ہوں. جی حکم.
جس طرح میں آپ کی اکٹھی کرنا چاہتا ہوں, آپ نے فرمایا تھا کہ ادر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی تھی, وہ ان کی اکلوتی بیٹی نہیں تھی, ان کی اور بھی بیٹیاں تھیں, حضرت زینب تھی, ام کلثوم تھی. تو یہ تصدیق کرنا چاہتا ہوں میں آپ کی کہ وہ اکلوتی بیٹی نہیں تھی حضرت فاطمہ الزہرا. اور دوسرا یہ کہ آپ کسی بھی صورت میں کربلا, لیکن بہت 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 متبرک جگہ ہے آپ, لیکن کسی بھی صورت میں آپ اس کو حج کے یا حج کے مجمع سے کمپیئر نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں. حج جو ہے آپ کے 5 پلر آف اسلام کا حصہ ہے, اس کے بغیر اگر آپ کا اسلام مکمل نہیں ہوتا ہے. یہ آپ کا عقیدہ ہے توحید, نماز, زکات, روزہ, حج. تو آپ کے جب ایک عالم آیا تھے وہ اس کو اس سے کمپیئر کر رہے تھے حج سے, کہ وہ کہ ان سے جو 35 لاکھ کا مجمع نہیں سنبھالا جاتا ہے, فلانا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. تو یہ اس سے آپ کمپیئر بالکل مت کیجیے. حج جو ہے بہت بہت
ایک دو چیزوں کی میں بھی آپ کی تصحیح کر دوں کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ جو تھیں وہ اکلوتی صاحبزادی تھیں, باقی جو چار تھیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری شادیاں کی تھیں وہ ان خواتین کی پہلے سے بیٹیاں تھیں, وہ اسٹیپ ڈاٹرز تھیں, ہاف ڈاٹرز تھیں. جو ریئل ڈاٹر تھی ان کی, جو سگی بیٹی جسے کہا جاتا ہے, وہ ایک تھی, ہم اس کا ذکر کر رہے تھے نمبر. تو اگر آپ اپنے عالم دین سے پلیز پہنچ لیجیے گا, آج جب مسجد میں جائیے گا تو اگلے ہفتے پھر آپ مجھے اس کا جواب دیجیے گا, نمبر ون. نمبر ٹو چیز جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کمپیریبل, نعوذ باللہ بالکل نہیں کیا جا سکتا میرے بھائی. وہ صرف بتایا جا رہا تھا کہ اتنے لوگوں کا انتظام سنبھالنا مشکل ہوتا ہے کمپیئر ٹو جو ایک بہت ایڈوانس کنٹری ہے جس کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے حاجیوں کا, تو اس کے اوپر بات ہو رہی تھی. بہت بہت شکریہ میرے بھائی آپ کا فون کرنے کا اور بات کرنے کا, ضرور اس طرح کی باتیں چیت کہا کریں, کمیونیکیشن اوپن کیا کریں. میرے پروگرام کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. سید آصف رضا کو جواب, خدا حافظ, یہاں پہ اجازت دیجیے. میرا نمبر ہے 4164278655.
The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
Adnan Bashir of Cityscape and Buzzmax.ca present Living Legend Ustad Rohak Fateh Ali Khan live in concert. On Friday, October 18th, 2019, at Roy Thompson Hall, Toronto. For tickets and sponsorships, call 416-989-8555 or visit roythompsonhall.com.
ٹروڈو اور لیبرلز جرائم کے معاملے میں نرم ہیں, ہمارے یہاں پر تشدد جرائم بڑھ رہے ہیں. اینڈرو شیر کی سربراہی میں کنزرویٹو حکومت جرائم کے خلاف سخت ہوگی, خاندانوں پر ٹیکس کم کرے گی اور کینیڈا کی معاشی ترقی اور خوشحالی پر توجہ دے گی. براہ کرم 21 اکتوبر کو اپنے کنزرویٹو امیدوار کو ووٹ دیں.
स्वीट महल ते इस दिवाली लग रहा है मठियाइयां दा मेला, थोड़ा खाओ जी पर खाओ वधिया। स्वीट महल तो लाओ ड्राई फ्रूट, देसी घ्यो दियां बनियां जलेबियां, स्वीट महल स्पेशल डेकोरेटेड डब्बे। पहुंचो 680 रेक्सडेल बुलेवर्ड और कॉल 416-679-9191। सेलिब्रेट दिवाली विद स्वीट महल।
कम्युनिटी दा सब तो पुराना ते वड्डा शोरूम है सोडी फर्नीचर। बेहतरीन आफ्टर सेल कस्टमर सर्विस अते फाइनेंसिंग अवेलेबल। 74 डेवन रोड अते 142 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन। कॉल 9058747171। सोडी फर्नीचर।
ਘਰ ਨਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਡਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸ਼ਟਰ, ਬਲਾਈਂਡਸ, ਵਰਟੀਕਲਸ, ਰੋਲਰ ਸ਼ੇਡਸ, ਹਨੀ ਕੈਂਪਸ, ਪਲੀਟਡ ਸ਼ੇਡਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ